साथियों, जो प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उसकी छपी हुई कॉपियां तो आपके हाथ में आ पहुंची होगी। प्रस्ताव मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि प्रस्ताव का हर एक पहलू आप समझ के उसको पारित करना चाहिए और उसके बारे में जो कुछ कहना है वो भी उसके बाद ही हम ठीक तरह से कह सकते हैं। मुझे माफ करेंगे कि मैं पहली बार एआईसीसी में ये प्रस्ताव हिंदी में पेश कर रहा हूं, कुछ मुश्किल होगी तो मैं अंग्रेजी की भी मदद लेना चाहता हूं, आप मुझे माफ करेंगे बीच बीच में। मेरा एक काम तो हल्का हो गया कि बाबूजी ने अध्यक्षजी ने अपने भाषण में आज के जो राजकीय भूमिका है वो आपके सामने विस्तार पूर्वक रखी हुई, क्योंकि जिन्होंने उनका भाषण सावधानता से सुना होगा उनको पता है कि ये जो प्रस्ताव हमने अपने सामने रखा हुआ है उसकी भूमिका तो वही है। मैं ये बात का ही खुलासा करना चाहूंगा कि ये राजकीय और आर्थिक प्रस्ताव एक कर दिया। मानी यह है कि इससे पहले हमने हमारी राजकीय नीति और आर्थिक नीति अलग अलग प्रस्तावों द्वारा बंबई अधिवेशन में पारित की थी और जो कुछ मूलभूत एक बुनियादी बातें उसके बारे में देश के सामने और अपने साथियों के सामने रखना था वो रख दिया। अब हमें आर्थिक नीति और राजकीय नीति अलग अलग तरीके से नहीं देखनी है। आज ऐसी स्थिति में हम आ पहुंचे हैं कि राजकीय नीति और आर्थिक नीति हाथ एक दूसरे से मिलजुल के चलनी चाहिए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी कांट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर टू नाउ कंबाइंड। आज हमारी राजकीय स्थिति ऐसी हो गई है कि इस वक्त खाली राजकीय विचारों को सामने रखना और आर्थिक मांगों को सामने रखना अलग अलग ढंग से, इससे हमारी राजकीय नीति आगे नहीं बढ़ने वाली। जो राजकीय नीति का प्राण होती है आर्थिक नीति और आर्थिक नीति की ताकत होती है राजकीय नीति। एक दूसरे से अलग रहने से एक कमजोर बनती है, आंधी बन जाती है। इसलिए हमें मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के सोचना है और मिलजुल के अपनी नीति पर अमल करना है। इसलिए ये प्रस्ताव आर्थिक और राजकीय नीति का जुला मिला के बना हुआ प्रस्ताव। क्या राजकीय स्थिति आज हमारी है, जिसका वर्णन हमने हमारे बंबई के प्रस्ताव में किया था और जो फिर हमने दोहराया था दिल्ली के अधिवेशन में, वही चीज आज हिन्दुस्तान के पॉलिटिक्स में, राजकीय नीति में, राजकीय व्यवहार में हमारे नजर आने लगी। हमने उस वक्त यह कहा था कि देश के जीवन में, राजकीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में कुछ दो चीजें अलग अलग ढंग से हमारे सामने आने जा रही है। एक बात ये थी और कांग्रेस जिसका प्रतिनिधित्व करती है वो जनता चाहती है कि हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हम बदल करना चाहते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि जो सीधी बातें हैं, गरीब चाहता है, बेरोजगारी चाहता है, जो हमारा ट्राइबल है वो चाहता है, काम करने वाला जो मजदूर है वो चाहता है कि अपने हमारे जिंदगी में कुछ बदल होना चाहिए, खाने पीने के, रहने के रीति रिवाजों में कुछ बदल होना चाहिए, वो बदल के होना चाहते हैं। और हमारे देश में ऐसे भी कोई एलिमेंट है, कुछ पहलू है, कुछ लोग है जो चाहते कि हिंदुस्तान न बदले। हिंदुस्तान न बदले उसकी मानी यह है कि उनकी स्थिति न बदले। राजा महाराजाओं चाहते कि उनकी स्थिति न बदले, जो धनी मालिक है वो चाहते कि उनकी स्थिति न बदले, जो बड़े जमींदार है वो चाहते कि उनकी स्थिति न बदले, और जो मजदूर है, जो काम करने वाला कामगार है, किसान है, जो बेरोजगार नौजवान है, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बदले। हम हिंदुस्तान को आजादी लाई है इसलिए मनाई है, न खाली हम जैसे कई लोग मंत्री बने, महामंत्री बने और कोई भी बने, लेकिन वो भी चाहते कि अपनी जिंदगी को वो कुछ बदल डाले, नहीं तो इस आजादी की माने कुछ नहीं होती उनके लिए। इसलिए ये दो चीजें हमारे देश के सामने हैं कि जो हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और दूसरा एलिमेंट ऐसा है कि जो बदलना नहीं चाहता। आज हिंदुस्तान के जीवन में जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये दो तत्वों के बीच लड़ाई है। और हमारी जो कांग्रेस है, जो नई कांग्रेस कही है, नौजवान कांग्रेस कही है, जो गांधी जी और नेहरू जी की कांग्रेस है, उसका जन्म ही इस प्रतिज्ञा से हुआ है। इस कांग्रेस की जो महानता है, इस कांग्रेस की जो विशेषता है, इस काम में इस कांग्रेस का जो जन्म हुआ था, उस प्रतिज्ञा के साथ हुआ था कि हम हिंदुस्तान के जीवन को बदलना चाहते हैं। हम किसी के नीचे दबे हुए रहते, हम नहीं दबना चाहते। आज भी वो स्थिति है कि हम ये ग्रैंड अलायंस की बातें करते हैं, जो कुछ बहुत ग्रैंड अलायंस उन्होंने करने की कोशिश की, नहीं बना, लेकिन सही माने में वो बन गया, ऐसा मैं मानता हूं। दिस इज अ ग्रैंड अलायंस, देयर इज नथिंग ग्रैंड अबाउट इट। कुछ कहते हैं ग्रैंड अलायंस है, हिंदी में कहते हैं कुछ बृहत मोर्चा करके कहते हैं इसको, लेकिन मैं तो अपने सामान्य लोगों को कहते हैं कि भाई ये राजा महाराजा मंडली है, इसके लिए कुछ दूसरी सोचने की बात है। क्योंकि इसेंशियली, आप मुझे माफ कीजिए, मुझे जो कुछ अंग्रेजी भी कहने की आवश्यकता तो मैं कहूंगा, मैंने कहा आपसे, इसेंशियली द प्रेजेंट ग्रैंड अलायंस इज अ फ्यूडल इन कैरेक्टर, बिकॉज फ्यूडलिज्म इज समथिंग विच डजंट सरेंडर वेरी इजिली। इट इज एन एलिमेंट विच ऑलवेज लुक्स टू द पास्ट फॉर ग्लोरी, इट ऑलवेज लुक्स टू द रिलीजन फॉर सम सॉर्ट ऑफ द सोफिस्टिकेशन ऑफ देयर आइडियाज, एंड इट इज रियली स्पीकिंग इंट्रेंच फॉर सेंचुरीज टूगेदर। दे डोंट वॉन्ट टू गिव अप इजिली, दे डोंट वॉन्ट टू सरेंडर इजिली, दे कैन सरेंडर ओनली वेन द पीपल विल मार्च एंड स्टार्ट टू डिमोलिश इट, देन अलोन इट कैन बी रिवाइव्ड। तो ये सरंजाम तत्व है, ये सरंजामी तत्व है, इनको बदलना है, और ये काम हमें करना है। और आज जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की जनता की एक अच्छी बात हो रही है। बात तो अजीब लगती थी कि कैसे हमारे सिंडिकेट के जो हमारे पहले नेता थे, हम मानते थे नेता, लेकिन उनकी नजर की और दूसरी जगह, लेकिन वो राजा महाराजाओं का दल जो स्वतंत्र दल है, वो तो क्या हिंदुस्तान की स्थिति न बदलने वाले स्टेटस को वाले लोग, और जनसंघ महंतों की पार्टी है ये। इन सब ने एक होकर तो यही प्रतिज्ञा की है कि हम हिंदुस्तान को बदलना नहीं चाहेंगे। कहते हैं क्या बीच में वो लोकशाही तत्वों को संभालना चाहते, किस तरह लोकशाही तत्वों को संभालने वाले, जो तत्व लोगों को नहीं संभालने वाला है वो लोकशाही को कैसे संभालने वाले की कोशिश करने वाले। तो ये लड़ाई है दोनों के बीच, और जो जो कुछ हुआ है 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, वही इस बात को साबित कर देता है कि ये लड़ाई आगे लड़ने चलने वाली है। और इस कांग्रेस के सामने सवाल ये है कि हम गांधी नेहरू के कांग्रेस के वंशज हैं, ये कांग्रेस जो है वो उनकी बनी हुई कांग्रेस के हम सिपाही है, तो हम पर जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को बदलने के लिए, हिंदुस्तान को समाजवादी रास्ते पर लेने के लिए, जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, जो किसान गांव का है, जो मजदूर शहरों का है, जो नवयुवक हमारे कॉलेजेस में और इसमें काम करने वाला है, जो बेरोजगार है, जो छोटा व्यापारी है, वो सब अपना एक मोर्चा बनाएं, और ये मोर्चा बना के जो समाजवाद की लड़ाई हमें लड़नी है, इसका खाली पुकार नहीं करना है, इसके लिए हमें हर दिन काम करना है, ये प्रस्ताव की ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा, ये प्रस्ताव आप आगे जाके देखेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि ये खाली कहने से नहीं होगा, खाली ये प्रस्ताव पारित करने से नहीं होगा, यहाँ के जो हम AICC के मेंबर है वो अपने हाथ उठा के पारित करने से काम नहीं होगा, ये संदेश लेके हमारे छोटे छोटे गांव में जाना होगा, तो हमारे लड़ाई में शामिल होने वाले सेना जो सैनिक है वो वहां बैठे हुए हैं, हम उनको साथ लेके जाएंगे तो कोई चिंता करने की बात नहीं। मत चिंता कीजिए कि यूपी के लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है और केरला के लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है। आज ही हिंदुस्तान को बदलने की ताकत इस गांव में रहने वाले हर एक घर घर में रहने वाला जो गरीब आदमी है उसके हाथ में है। हम उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के जीवन में नई लड़ाई आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो नई लड़ाई शुरू हुई हिंदुस्तान में वो आखिरी लड़ाई बनने वाली है हिंदुस्तान के लोग का। ये लड़ाई हम हारेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबों को उम्मीद नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में उम्मीद रहने वाली है उन लोगों की जो राजा महाराजा है, जो बड़े धनी मालिक है, जो बड़े जमींदार है। ये बड़ी आखिरी लड़ाई है। ये जो दोनों तत्वों के बीच की जो लड़ाई की बात आपके सामने रखी है उसकी मानी है कि आखिरी लड़ाई लड़नी है हमें। आने वाले 7-2 साल में ये लड़ाई हमें पूरी करनी है। इसके लिए हमारी सेना कहाँ है? हमारी सेना मंत्रिमंडल बनाने वाले छोटे लोगों के हाथ में नहीं है। हमारी सेना आखिरी गांव में रहने वाले लोगों में। हम उनके पास जाएंगे, उनके पास हमारी शक्ति वो हमें प्रदान करेंगे तो कोई दुनिया में हिंदुस्तान में ताकत नहीं कि कांग्रेस को पीछे हटाने की कोशिश कर सके। तो इसलिए जो पहली बात बुनियादी बात इस प्रस्ताव में आपने सामने रखी है वो ये रखी है कि ये सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान के जीवन में आई है और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए हमें सबको कहना है कि आइए नौजवान, आइए किसानों, आइए मजदूरों, आइए भाइयों बहनों, सब आइए और मिलाकर उसको पहले जैसे मोर्चा बनाएंगे जैसे गांधी जी ने कांग्रेस का मोर्चा बनाया था, नेहरू जी ने जैसे कांग्रेस का मोर्चा बनाया था। ऐसे कांग्रेस को आज नया मोर्चा हमें बनाना है और इस काम करने का संदेश इस प्रस्ताव में। अब आगे जाना होगा इसके आगे। जो पहली बात जो प्रस्ताव के पहले विभाग में कही है वो तो मैंने आपके सामने रख दी। अब बात यह है कि प्रस्ताव में ये भी कहा है कि जो खाली हमारी मनमानी नहीं है, हमारे कुछ मन में आए बातें और हमने यहाँ रख दी, ऐसी भी कोई बात है नहीं। क्योंकि हमने देखा है, लोगों के जीवन में देखा है, लोगों ने अपने विचारों से कह दिया है कि ये कैसा बन रहा। जो केरला का इलेक्शन हुआ, जो पंजाब का इलेक्शन हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केरला की जनता को। हम कई लोग समझते थे कि भाई केरला में तो पूरा हम हट गए, कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारे पॉलिटिकल पंडित थे, जो अखबार में लिखा करते हैं और कॉलेजेस में कुछ लेक्चर दिया करते हैं, उन्होंने तो कह दिया था कि अब लोकशाही की कुछ आशा नहीं केरला में। साफ ये गलत रास्ता है सोचने का, समझने का। जब हम सही बातें रखने के लिए इस केरला की जनता के सामने गए, हमने जब हिंदू मासेस में और मुस्लिम मासेस में कोई फर्क नहीं है समझा, हम नामों से डरते हैं, डरने की बात नहीं है। हम जनता के सामने जाए, क्रिश्चियन जनता, मुस्लिम जनता, हिंदू जनता, उनके सामने जाके हमने कहा कि ये नई लड़ाई हमें हिंदुस्तान में लड़नी है, आइए भाई हमारे साथ कीजिए। केरला की जनता ने हमारे साथ की है और फिर जाहिर किया है कि ये हमारा जो दल है वो जनता का दल है, जीवन का दल है, ये कुछ आगे जाने वाला दल है। इसका एक साबित हमारे पास चीज हमारे जीवन में केरला ने किया। इसके लिए मैं केरला की जनता को शतशा धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। वही बात है पंजाब, मुझे कुछ पानी हो तो भेज दीजिए। तो दूसरी बात तो ये एक प्रस्ताव में बात रखी है, खाली हम प्रस्ताव में ये बात नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान की जनता के मन के विचार है और वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब देखिए इकोनॉमिक जो बात उसने रखी है वो बात हम समझना चाहिए। जो दो तीन बातें हमारे सामने आई, बम्बई में आई, दिल्ली में आई, वो बातें तो थी। इकोनॉमिक प्रस्ताव के बारे में हम बड़ी बड़ी गंभीर और गहराई की बातें करते हैं, लेकिन लोगों के सामने जो सवाल है वो तीन सवाल है। पहला सवाल है गरीबी का, दरिद्रता। दूसरा सवाल है बढ़ते जाने वाली विषमताओं। और तीसरा सवाल है बेरोजगारी। उसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये सीमित नीति, सीमित करने की जो नीति है, उस सीमित करने की नीति खाली भूमि के बारे में नहीं, ये नीति जो नागरी भूमि है उसके बारे में भी आनी चाहिए, अमल में आनी चाहिए, इसके बारे में हमने फैसला किया है और वो फैसला जल्दी से जल्दी अमल में लाने के लिए हमने लोगों के सामने एक बात रख ली, क्योंकि कहीं हमारे जो विरोधी है वो विरोध कहते हैं कि देखो ये लोग ग्रामीण जनता के खिलाफ, नहीं साहब, हम ग्रामीण जनता के खिलाफ नहीं, हम नागरी जनता के खिलाफ नहीं, हम नागरी और ग्रामीण गरीब जनता के साथ रहना चाहते हैं और वहां काम करने वाले जो बड़े धनी लोग हैं उनको अपने साथ लाना चाहते हैं, उनके भी हम विरोधी नहीं है, उनको हम ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, ये हमारी नीति इस काम की। और इसके बारे में लैंड डिफेंस के बारे में कई बीच में ऐसा एक कई लोगों ने हवा बहराई कि बीच में कांग्रेस के पीछे से एक जगह आए थे, उन्होंने कुछ भूमि सुधार को विरोध किया, बिल्कुल गलत बात। एक आपस में जब चर्चा चलती तो उसके सब पहलू सामने लाने की बात होती है, कोई कांग्रेस में नहीं हो सकता है कि जो भूमि सुधार के नीति को विरोध कर सकता है, ये बात होगी नहीं। और इसलिए कांग्रेस हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके साथ बैठ के बात करके और उनके तरफ से हम करना चाहते कि उनके तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की भूमि सुधार की जो नीति होगी उस नीति को हर ये कांग्रेस वाला एक तरह से बदली हो गया है, उसको पीछे नहीं हटना आएगा। और कौन सी नीति है, एक तो बात सही बात कि भूमि सुधार की नीति के बारे में देखिए, ये भूमि का सवाल ऐसा है हिंदुस्तान में है कि कभी कभी मैं एक गांव में रहने वाला किसान से संबंधित हूँ, किसान परिवार का हूँ, आप जानते हैं जब मैं भूमि की बात मैं सोचना चाहता हूँ तो मेरे नज़र में मेरे महाराष्ट्र की भूमि के सवाल आते हैं, जमीन के सवाल आते हैं। जब बिहार का आदमी सोचने की कोशिश करता है तो बिहार की जो भूमि के सवाल होते हैं उसकी तरफ से सोचता है, उत्तर बिहार का एक तरह से सोचता है तो दक्षिण बिहार का दूसरी तरह से सोचता है, क्योंकि अलग अलग भूमि की शक्ति होती है, जो पड़ने वाला जो पानी होता है उसका कुछ ढंग अलग होता है, भूमि की शक्ति कुछ अलग हो जाती है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एक फार्मूला नहीं बनता, अलग अलग फार्मूले बनने चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल वार रखा गया है। लेकिन ये भी बात सही है कि कई राज्यों में भूमि सुधार की नीति पर अमल हुआ, लेकिन कई राज्यों में भूमि नीति पर अगर अमल नहीं हुआ है और हुआ होगा तो कुछ गलत भी हुआ होगा। इसलिए हमने ये कहा कि इसके बारे में ये जो कुछ एक सीमा रखी हुई कहीं जब ऊंची सीमा हो तो हमें नीचे करनी हो, हमारी दृष्टि सीमा नीचे करने की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि मिलाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये भूमि सुधार के पीछे की हमारी नीति रहने वाली है। तो ये एक बात हमारे सामने आपके सामने रखनी। और दूसरी बात कि भूमि की लिमिट क्या होगा, हर एक आदमी को सीमित भूमि देना है ये हमने मान लिया तो पता नहीं कैसी जब भूमि की बंटवारा होगा। इसके लिए हमने कहा कि परिवार एक बेसिस होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, उसी बेसिस पर हम भूमि का बंटवारा कर सकते हैं, इसलिए फैमिली की एक बेसिस मानी है। और मैं मानता हूं कि फैमिली की जो व्याख्या हो सकती है ये व्याख्या तो हो सकती है कि माँ बाप और उनके अभियान जो मायने बच्चे होते हैं बच्चा होते वही हो सकती है। तो ये एक इसके बारे में भूमि सुधार के बारे में एक जो कुछ विचार अपने रखने हैं वो प्रस्ताव में रखे हुए। दूसरी बात है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी का सवाल एक बड़ा गहरा सवाल है और बड़ा विशाल भी सवाल है, मैं मानता हूँ इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए और विचार पूर्वक उसके लिए कुछ एक नीति का अमल करना चाहिए। और ये एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, शहरों की एम्प्लॉयमेंट की बात है, गांवों की एम्प्लॉयमेंट की बात है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से सोचने से ये सवाल नहीं हल होने वाला। एम्प्लॉयमेंट की बात तो एक ही है, इसलिए हमने कुछ एक नई प्रतिज्ञा करने का त्याग किया है। इस प्रस्ताव में आप देखें शुरू तो करना चाहिए, पहला कदम तो उठाना चाहिए, पहला कदम उठाने बगैर ये कुछ ये जो हमारी सफर है पूरी होने वाली है, सफर तो पूरी करनी है और सफर सब पूरी करनी है, लेकिन पहला कदम जब तक नहीं उठाते तब तक सफर पूरी करने की दिशा में हम कुछ काम नहीं करने वाले। तो हमने पहला कदम तो इसके बारे में पहले उठाया, ऐसी कोई बात नहीं कि आज हम पहले कदम कर रहे, पहली बार कर रहे। जो हमारे 20 साल में जो कुछ हमारा पैदा होती रही। लेकिन अब हमें ये करना है कि हमारे गांव में ऐसे विभाग है कि जहां ऐसे कई परिवार हैं, लाखों परिवार ऐसे हैं कि जिस परिवार में कमाने वाला एक भी आदमी नहीं होता। हमें ये और बेरोजगारी का ये सवाल एक दूसरे ढंग से सोचना, तो हमें एक एक अग्रसम देना है, अग्रहत देना है ऐसे परिवारों को कि जिस परिवारों में कुछ कमाने वाला एक ही आदमी नहीं है। इस ख्याल से हम ये कोशिश करने वाले हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में एक प्रखंड खोला जाए, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए कि जहां कम से कम 1000 ऐसे लोग हो कि जहां कोई कमाने वाला जिस परिवार में नहीं, उनको प्रधान हक देने के बाद उनको अपना काम देने का काम शुरू करे। ऐसे कोई 5 लाख आदमियों को, 5 लाख परिवारों को 71 साल में, 1 साल में काम देने का एक हमारा काम पूरा करना चाहते। ये काम इसमें रखा हुआ है। आजकल बड़ी एक विचित्र स्थिति हो रही है, लोगों के मन में है एक चीज, महंगाई। एक महंगाई बड़ी अजीब चीज बन गई। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते लेकिन हम जैसे पकड़ने के लिए जाते तो हमारे से आगे बढ़ जाते। बचपन में हम खेल करते थे कि आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज यहां होने जा रही है। वेतन बढ़ाने का नतीजा यह होता है कि कीमतें और बढ़ जाती हैं, और कीमतें बढ़ने से फिर और वेतन बढ़ाने की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे एक विशेष सर्कल कहते हैं। पता नहीं आप हिंदी में क्या कहेंगे, मैं कहूंगा दुष्ट। मैं मलयालम में कहा सुना कि उसको दूषित वलय कहते हैं। दूषित वलय हो या दुष्ट चक्र हो या विशेष सर्कल हो, ये विशेष सर्कल हमें तोड़ना होगा। हमारे आर्थिक नीति का एक सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमें करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे। कई लोग कहते हैं कि कंट्रोल की बात है, खाली कंट्रोल की बात नहीं होती। उसके लिए कुछ एक नई बुनियादी, नई नीति, आर्थिक नीति बदलनी, और वो नीति के लिए यहां कहा गया है कि कोऑर्डिनेटेड वेल्थ एंड इनकम पॉलिसी। ये हर एक आदमी के लिए कितना वेतन हो, ज्यादा से ज्यादा उसका आय कितना हो, और हमारी संपत्ति देश की जो बनती है, और संपत्ति के बारे में हमारी कुछ एक नीति हमें बनानी होगी। और जब ये नीति बना के उसके हिस्से के आतौर से जब ये छोटे छोटे सवालों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तब हो सकता है कि हमारी जो कीमतों की नीति है, कीमतों की जो वृद्धि है, वो तो वृद्धि हमारे कब्जे में हम ला सकें। तो ये भी एक ख्याल हमारे सामने रखा है, और उसके लिए ये भी एक विनती की है। देश में जो आज रोजगारी पर लोग हैं, उनसे ये भी विनती की है कि हाँ, आपका हक है वेतन की वृद्धि मांगने का, आपका हक है, हम ना नहीं कहते। लेकिन ये हक मांगने से पहले अभी ये भी सोचिए कि हमारे देश में ये बुनियादी, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई है नहीं। तो अपना काम और अपनी, इसके लिए उनसे भी हमें प्रार्थना की है। हम नेशनलाइज बैंक करते गए, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के हमने नए काम शुरू कर दिए, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। मैं उनका जो हक है वो ना कहने की ये नहीं बात कर रहा, लेकिन ये ख्याल उनके सामने रखने के लिए कर रहा हूं कि जो रोजगारी पर है उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये बात अब वृद्धि करने से देश के हमारी आर्थिक जीवन पर क्या असर होगा, ये भी उन्हें सोचना है। इसलिए इस प्रस्ताव में ये भी एक विनती की है कि जिनके पास है वो किस तरह से सोचे, वो ज्यादा मांगने की कोशिश न करे, लेकिन देश की पूरी जो आर्थिक स्थिति है वो नजर में रख के अपना काम करने का प्रयास करे। ये भी एक नीति, एक प्रयास इस प्रस्ताव में आपके सामने रखा। तो ये प्रस्ताव, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी राजकीय नीति और हमारी आर्थिक नीति का एक मेल जोल मिल हमने रखा है, और ये एक हमारे सामने हमने ध्येय रखा है, उसके साथ आगे जाने के लिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये हमारा प्रस्ताव आप एक मात्र से इनामी मछली पारित करने की मदद कीजिए। जय हिंद।